हवेली की सारी हलचल, हंसी मजाक, कैमरे की क्लिक, सब धीरे धीरे धुंधले पड़ गए थे। अब कहानी अपने सबसे शांत पर सबसे गहरे कमरे में आ गई थी, विश्वनाथ का ऑफिस कैबिन। कमरा हमेशा की तरह ठंडा था। बड़ी टेबल, धूप की पतली किरणें पर्दों से छनकर जमीन पर गिरती हुई, और बीच में बैठा विश्वनाथ। उसके सामने ताज़ा आई फैमिली फ़ोटो रखी थी, लेकिन वो फ़ोटो में मौजूद सारे चेहरों को नहीं देख रहा था। न रत्ना देवी का गर्व, न रम्या की हंसी, न शकुंतला की नकली मुस्कान। उसकी नज़र बस एक जगह टिकी थी, श्यामली। उसकी साड़ी की हल्की चमक, चेहरे की झिझक, आंखों में दबा हुआ डर और मान, सब जैसे फ़ोटो के फ्रेम से बाहर निकलकर उसके दिल पर छाप छोड़ते जा रहे थे। वो धीमे से कुर्सी पर पीछे झुका और फ़ोटो को उंगलियों से छूकर आगे खिसकाया। एक लंबी सांस उसके सीने से निकली, धीमी, भारी, अनकही। ये लड़की, उसने मन ही मन कहा, मेरा कितना ख्याल रखती है। बात बस ख्याल की नहीं थी, वो सारा दिन, हर कदम पर, उसकी आंखों में ढकी हुई चिंता, सावधानी, उसका एक इशारा सुनते ही चल पड़ना, जैसे उसे दुनिया में बस एक ही कर्तव्य पता हो, विश्वनाथ। पर अगले ही पल उसके मन ने उसी गलियारे में एक नया सवाल खड़ा कर दिया, और मैं उसके लिए क्या करता हूं? वो कुछ सेकंड चुप रहा, जवाब नहीं मिला, पर मन ने खुद ही एक कड़वा उत्तर दे दिया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। दिल में हल्की सी चुभन उठी, पर उसका स्वभाव, उसकी आदतें, उसका वर्षों पुराना सख्त ढांचा तुरंत खड़ा हो गया। खुद से बोला, मैं क्या कर सकता हूं? घर में और सब हैं उसका ख्याल रखने को, माँ है, नौकर हैं, पूरा स्टाफ है, किसी औरत को और क्या चाहिए? उसके शब्द सख्त थे, लेकिन मन के भीतर एक सॉफ्ट सी धड़कन उसे खुद की बात झूठी लगवा रही थी। पर जो वो चाहती है वो कोई और नहीं दे सकता, उसने बिना कहना चाहा हुआ सच अपने ही अंदर दबा दिया। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। टेबल पर कैप्ट फोन वाइब्रेट हुआ, मीटिंग का मैसेज। विश्वनाथ ने फोटो की ओर आखिरी बार देखा, जैसे मन में कुछ कहकर, कुछ स्वीकार कर, खुद से ही बचकर कुर्सी से उठ गया। कारखाना। मीटिंग से लौटते लौटते उसके चेहरे पर वही शांत, गंभीर, सख्त भाव वापस आ चुके थे। कारखाने का बड़ा गेट खोलते ही तेल की खुशबू, मशीनों की आवाज और गर्म हवा उसके चेहरे से टकराई। दोपहर की इतनी देर में आमतौर पर यहां सन्नाटा रहता था, पर आज किसी मशीन के पास एक आकृति खड़ी थी। विश्वनाथ एक पल के लिए रुका, फिर भौहें हल्की उठीं। अरे विशाल, तुम यहां? विशाल मुड़ा और उसके चेहरे पर सहज सी मुस्कान थी। जी मामा जी, आज कॉलेज में कुछ खास नहीं था। फिर माँ ने कहा था कि आपको किसी मटेरियल या डिज़ाइन में दिक्कत आ रही है, तो सोचा शायद मैं मदद कर सकूं। विश्वनाथ उसकी तरफ बढ़ा, उसकी हाजिरी पर एक हल्की सी प्रशंसा भी आंखों में उभरी। अच्छा किया आ गए, उसने कहा, चलो अंदर आते हैं, मैं दिखाता हूं कहां समस्या है। दोनों अंदर की तरफ बढ़े, उनके कदमों की आवाज़ मशीनों के बीच गूंजती रही, पर चलते हुए विश्वनाथ के चेहरे पर कुछ और भी था, एक ऐसा एहसास जो वो किसी से कह नहीं सकता था। आज श्यामली की फोटो देखकर जो तूफान उसके भीतर उठा था, उसका असर अभी भी बाकी था। शायद इसीलिए वो विशाल को दिखाते हुए कभी कभी ठहर जा रहा था, कभी किसी फाइल पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, कभी मशीन की आवाज अचानक और तेज लग रही थी। लेकिन विशाल इस सबसे अनजान, पूरी गंभीरता से डिजाइन समझने में लगा था। विश्वनाथ ने हल्का सा सिर हिलाया। दिखता है तुम्हें चीजों का शौक है, उसने कहा। विशाल हल्का हंस दिया। शौक से ज्यादा जिम्मेदारी लगती है मामा जी, उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। जिम्मेदारी। विश्वनाथ के मन में एकदम से श्यामली की आंखें चमक उठी, डरी हुई पर भरोसे से भरी हुई। उसने हल्का सा सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे किसी याद से बचना चाहता हो। थोड़ा आगे जाकर वो विशाल को एक कोने में ले आया।
यही समस्या है, उसने समझाया। मटेरियल की फिनिशिंग ठीक नहीं आ रही, डिजाइन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। विशाल ने झुककर ध्यान से सब देखा, हाथ से किनारों को टटोला, एक दो नाप निकाले और फिर बोला, मामा जी ये ठीक हो सकता है, थोड़ा प्रोसेस बदलना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। विश्वनाथ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा है, वो बोला, चलो बाकी भी दिखा देता हूं। और फिर दोनों आगे बढ़ गए। कारखाने की रोशनियों में दोनों की परछाइयां लंबी पड़ रही थीं। विशाल जोश में काम समझने में लगा था और विश्वनाथ काम पर ध्यान होने के बावजूद कभी कभी अचानक अनजाने में खाली जगहों की तरफ देख लेता था जहां कोई नहीं खड़ा था, पर उसे लगता था कि वहां श्यामली की सूरत तैर रही है, चुपचाप, सबसे परे, बस वही श्यामली। वो बिना बात किए हर चीज साबित कर चुकी थी कि उसका दिल जहां भी धड़कता है वो जगह सिर्फ एक है, विश्वनाथ। और आज पहली बार विश्वनाथ ने भी महसूस किया उसका मन उसे धोखा नहीं दे पा रहा, कुछ बदल रहा है, धीरे, गहरा और खतरनाक। मशीनों के शोर के बीच एक आदमी अपने मन से जूझता हुआ और एक नई भावना जिसके नाम से भी वो डरता है अब उसके दिल में घर बनाने लगी है। हवेली शकुंतला का कमरा। तीली लाइट पूरे कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। शकुंतला आईने के सामने बैठी गहने उतारते हुए खुद से ही बुदबुदा रही थी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो मैंने विशाल को आज भाई की मदद के लिए भेज दिया। उसके होठों पर हल्की चालाक मुस्कान तैर गई। उसने कंघी उठाई, बाल समेटते हुए आगे बोली, इसीलिए तो मैंने आर्यन को रोक लिया, वो बच्चा तो बस उलझ जाता, कुछ समझ ही नहीं पाता। अब विशाल जाएगा, काम सीखेगा, अपनी पकड़ बनाएगा और धीरे धीरे उसकी आंखें योजनाओं के चमकते अंधेरे से भर गईं। धीरे धीरे आर्यन की जगह ले ही लेगा, वरना हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, सब हाथ से निकल जाता। वो उठी, खिड़की की तरफ चली और बाहर अंधेरे में झांका। ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी, अब खेल मैं चलाऊंगी और सब मेरे हिसाब से होगा। कमरे में सन्नाटा था, पर शकुंतला की चालें हवेली की हवा में फैलनी शुरू हो चुकी थी।